माँ सा ने अभिमन्यु की ऐसी बातें सुनकर कहा, अभिमन्यु आप होश में तो है ना? आपको समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? हमारे राजघराने में आज तक कभी किसी भी औरत ने इस तरह का कोई काम नहीं किया है। हमारे राजघराने की औरतें सिर्फ और सिर्फ राजघराने की बहुएं बनकर रहती हैं। उन्हें इस तरह बाहर अपनी नुमाइश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इप्सिता को अगर राजमहल में रहना है और आपकी पत्नी कहलाना है तो उन्हें ये सारी चीज़ें छोड़नी होंगी। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ ही देख रही थी। अभिमन्यु ने मासा की बात सुनकर तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मासा, हम इप्सिता को ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। मॉडलिंग करना उनका सपना है और हम चाहते हैं कि वो अपना ये सपना पूरा करें। अभिमन्यु की ये बात सुनते ही मासा ने अभिमन्यु को घूर कर देखा और उन्होंने तेज आवाज में कहा, आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं अभिमन्यु? अभिमन्यु ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मासा, हमें पता है हम क्या बोल रहे हैं, और हमने इप्सिता से शादी इसीलिए की क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं और हम उन्हें उनके सपनों के खिलाफ नहीं जाने देंगे। मॉडलिंग करना उनका सपना है और हम उनके सपने में उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहते हैं, ना कि ये सब करके हम उनके सपने का अपने हाथों से गला घोंटते, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। इप्सिता शादी के बाद भी अपनी मॉडलिंग को कंटिन्यू करेंगी। मासा अभिमन्यु के मुंह से यह बात सुनकर उसे गुस्से से घूरते हुए देखने लगी, लेकिन अभिमन्यु ने मासा की बात ना मानने के लिए पहले ही ठान लिया था। वो उस समय पूरी तरह से इप्सिता की तरफ था, और जब इप्सिता ने देखा कि अभिमन्यु उसका साथ देने के लिए इस तरह उसके बगल में खड़ा हुआ था और वो अपनी मासा के सामने उसके लिए बहस कर रहा था, तो इप्सिता को इतना तो समझ में आ गया था कि अभिमन्यु उससे कितना प्यार करता था और वो उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ने वाला। और अभिमन्यु के चेहरे पर अपने लिए इतना प्यार देखकर इप्सिता बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और उसने धीमी आवाज़ में कहा, अभिमन्यु, अगर मासा चाहती हैं कि हम मॉडलिंग ना करें तो हम अपनी मॉडलिंग छोड़ देंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और वैसे भी हम नहीं चाहते कि हम मासा को अपनी मॉडलिंग की वजह से नाराज़ करें या फिर हमारी वजह से इस राज परिवार में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। हम इतने भी सेल्फिश नहीं हो सकते। इप्सिता ने जैसे ही ये बात बोली, अभिमन्यु हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। तभी मासा ने कहा, बहुत अच्छा डिसीजन है आपका इप्सिता, हमें खुशी हुई कि आपने हमारी बात मानी। अब आप खुद को इस परिवार में ढाल लीजिए। आज से आप अभिमन्यु की पत्नी और राजवंशी खानदान की बहू हैं, और आप हमेशा अब यहीं रहेंगी। इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया, और अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने इप्सिता की तरफ देखा और उसने तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा मासा, लेकिन हम आपकी ये बात नहीं मानते। हमने इप्सिता से प्रॉमिस किया था और हम अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे। और इप्सिता, आप शादी के बाद भी अपनी मॉडलिंग कंटिन्यू करेंगी। हम आपको बहुत बड़ी और फेमस मॉडल बनते देखना चाहते हैं। मासा ने जैसे ही अभिमन्यु के मुंह से ये बात सुनी, वो अभिमन्यु को देखकर बड़ी हैरानी से बोली, अभिमन्यु, आप हमारे खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं, जबकि इप्सिता इतनी समझदार है, वो खुद ये सब छोड़ने के लिए राजी हैं। अभिमन्यु ने तुरंत नहीं में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मासा, हम आपके खिलाफ नहीं जा रहे, बल्कि हम बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। हमारा इप्सिता के प्रति जो कर्तव्य है, हम उसे निभाएंगे। और आप खुद ही सोचिए, अगर वो सेल्फिश नहीं है तो हम भी इतने सेल्फिश नहीं हो सकते कि हम अपनी वजह से इप्सिता के करियर को दांव पर लगा दें। माँ अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? अभिमन्यु ने मासा का हाथ पकड़ा और उन्हें समझाते हुए कहा, मासा, अभी आपको हमारी बात ठीक नहीं लग रही होगी, लेकिन आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हमने इप्सिता से शादी की तो हमने उनसे कहा था कि हम उनकी खुशियों का ध्यान रखेंगे, और हम जानते हैं इप्सिता को मॉडलिंग में ही खुशी मिलती है। इप्सिता भी हमसे शादी करने के लिए इसीलिए राजी हुई कि हम राजमहल के राजा बन सकें। और अगर सोचिए, हम राजा बन भी गए और उसकी कीमत अगर इप्सिता को अपना करियर छोड़कर चुकानी पड़ी तो क्या ये सही होगा? मासा अभिमन्यु की बात सुनकर बिल्कुल चुप थी, और वो अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी, और अभिमन्यु की आंखों में एक अलग ही जीत नजर आ रही थी। मासा जब कुछ नहीं बोली तो अभिमन्यु ने कहा, आप भी जानती हैं कि हम कैसे इंसान हैं। हम अपने लिए किसी दूसरे को उसका ड्रीम सैक्रिफाइस नहीं करने दे सकते ना, और हम ऐसा नहीं होने देंगे मासा, और इप्सिता अपनी मॉडलिंग को कंटिन्यू करेंगी। ये बात फाइनल है। मासा अभिमन्यु के मुँह से ये बात सुनकर इप्सिता और अभिमन्यु दोनों को घूरते हुए देखकर बोली, क्या कहा आपने? ये बात फाइनल है, मतलब आप हमारी बात नहीं सुनेंगे? अभिमन्यु ने मासा की बात पर धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मासा, हम अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकते, और वैसे भी हमें इप्सिता के काम में कोई बुराई नहीं लग रही है। मासा अभिमन्यु की ये बात सुनकर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, आज तक राजमहल में कभी कोई औरत इस तरह से? मासा बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा मासा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जो प्रथा हमेशा से चलती आ रही हो उसी तरह से चलती रहे। हर चीज का एक वक्त होता है और हमें लगता है अब इस प्रथा को चेंज करने का टाइम आ गया है। और इप्सिता पर हमें पूरा भरोसा है, वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी ड्रीम को भी पूरा कर सकती है, तो क्यों नहीं हम उनके मॉडलिंग करियर में उनका साथ दें। हम उन्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। मासा, बेहतर होगा कि आप ही इस बात को एक्सेप्ट कर लें और चाचा सा की बातों में ना आए। अभिमन्यु इतना बोला और मासा ने अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, हम किसी की बातों में नहीं आ रहे। लेकिन ये सही नहीं अभिमन्यु, अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा। मासा, अभी से आप इस बात को गलत कैसे कह सकती हैं? और राज परिवार की रानियों के जो कर्तव्य होते हैं, इप्सिता उसे बहुत अच्छी तरह से निभाएंगी, इस बात का हम आपसे वादा करते हैं। इप्सिता देख रही थी कि अभिमन्यु और मासा के बीच की आर्ग्यूमेंट काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तभी अभिमन्यु को रोकते हुए इप्सिता ने कहा, रहने दीजिए अभिमन्यु, अगर मासा नहीं चाहती तो हम। इप्सिता बोल ही रही थी कि अभिमन्यु इप्सिता को पूरे हक से डांटते हुए कहा, नहीं इप्सिता, चुप रहिए आप, हम आपसे पहले ही बोल चुके हैं, आप अपने मॉडलिंग करियर को कंटिन्यू करेंगी और आपको इसके लिए कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं। मासा ने जैसे ही अभिमन्यु के मुंह से ये बात सुनी तो मासा ने अपने मन में कहा, अभिमन्यु अपनी जिद पर आ गए हैं और हमें नहीं लगता वो अब हमारी बात सुनने वाले हैं, इसलिए उनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। मासा ने ये बात अपने मन में बोली और उन्होंने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, ठीक है, अगर आपको हमारी बात नहीं सुननी है तो कोई बात नहीं, वैसे भी अब तो आप महल के राजा सा बने ही वाले हैं, तो फिर आपको हमारी किसी सलाह की क्या ही जरूरत होगी। जब कोई जरूरत नहीं है आपको हमारी, तो ठीक है, जो आपका मन करे वो करिए। इतना बोलकर मासा वहां से जाने लगी। मासा के मुंह से ये बात सुनकर अभिमन्यु ने उनके पीछे जाते हुए कहा, मासा रुकिए, हमारी बात सुनिए। मासा रुकी पर उन्होंने अभिमन्यु की तरफ नहीं देखा और तेज आवाज में बोली, हमारे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है आपको। इतना बोलकर मासा तुरंत अभिमन्यु के कमरे से बाहर चली गई और अभिमन्यु वहीं रुक गया। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देख रही थी।
तभी वो आगे बढ़ी, उसने अभिमन्यु के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अभिमन्यु, हमने आपसे पहले ही कहा था, मासा इसके लिए कभी राजी नहीं होंगी। आपने क्यों बेकार में मासा से इस बारे में बात की? हमें लगता है मासा आपसे नाराज हो गई हैं। मनाइए, हम वैसे भी पहले ही आपसे बोल रहे थे कि हम मॉडलिंग छोड़ देंगे। इप्सिता ने काफी उदास होकर ये बात बोली। तभी अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं इप्सिता, आप दोबारा ये बात अपनी जबान पर मत लाइएगा। हमने भी तो आपसे कहा था कि हम मासा को मना लेंगे, अभी वो थोड़ी सी परेशान है, शायद इसी वजह से वो भी हमारी बात समझना नहीं चाहती है, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम उन्हें मना लेंगे। अभिमन्यु की बात सुनकर इप्सिता ने एक गहरी सांस ली और वो मासा की तरफ ही देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ उदय नंदिनी के साथ राजमहल से बाहर निकल चुका था और वो कार ड्राइव कर रहा था। तभी नंदिनी ने कहा, जहाँ तक मैं उदय को जानती हूँ, उदय तो अपने मम्मी पापा के घर तो जाएंगे नहीं, तो फिर हम रुकेंगे कहाँ? नंदिनी ये बात सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी उसने उदय से पूछा, कहाँ जा रहे हैं हम? उदय ने नंदिनी की तरफ देखा, मगर इससे पहले कि उदय कुछ बोल पाता, नंदिनी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, एक्चुअली वो मैं कह रही थी कि अगर हमें ईशु की शादी तक यहाँ पर रुकना है तो हमें कहीं ना कहीं तो ठहरना ही होगा, तो क्यों ना हम रुकने के लिए मेरी मौसी के घर चलें? मेरी मौसी का घर यहीं पास में ही है, वहाँ हम आराम से 10-15 दिन रुक सकते हैं।